रात के लगभग 10 बज रहे थे। जिनी प्रियल को लेकर इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल आई हुई थी। निक ने जब उसे धक्का मारा था तब उसे चोट लग गई थी। सुबह ग्राउंड में लगी चोट को प्रियल ने नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन शाम होते होते उसके हाथ का दर्द बढ़ गया था। प्रियल के हाथ की सूजन देखकर जिनी उसे इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल ले आई थी। उनके साथ आरोही भी आ गई थी। एमा भी उसी वक्त किसी काम से हॉस्पिटल में आई हुई थी। प्रियल को देखकर एमा को याद आया कि ये वही है जिसे निक ने धक्का मारा था। एमा उनके पास आई और पूछा, हे गॉड, आर यू फाइन? जिनी ने उसे देखा और जवाब दिया, अरे एमा, प्रियल बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? एमा जिनी को हैरानी से देखने लगी। उसने हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम इस लड़की को जानती हो? हाँ, ये मेरी फ्रेंड और रूममेट दोनों हैं, जिनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। एमा इस जवाब से और भी ज्यादा हैरान हो गई। रूममेट? आर यू सीरियस? तुम्हें पता है ना, तुम ट्रेनिंग हेड हो, तुम एक स्टूडेंट को अपने साथ नहीं रख सकती। इसके लिए तुमने परमिशन ली थी? हाँ, मैंने खुद से परमिशन ले ली थी, जिनी हंसते हुए बोली। बाकी रॉन को मेरे डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर वैसे भी इस बार 2 स्टूडेंट ज्यादा थे और कमरों की तंगी पड़ रही थी, तो कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करना ही था। इन सब के बारे में तुम हमें अब बता रही हो? निक को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा, उसमें इस चीज़ के लिए कभी कोई परमिशन नहीं दी। तुम लोग इतने बिजी रहते हो कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। बाकी मुझे अपना काम करने के लिए तुम्हारी या निक की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कैंपस पर पूरा कंट्रोल मेरा है, और निक, कमरों की तंगी वाली बात उसे भी पता थी। एमा ने जिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे जिनी का ये रवैया पसंद नहीं आया था। उसने चेहरे पर नाराज़गी सी दिखाई और फिर वहाँ से चली गई। प्रियल और आरोही दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, और फिर प्रियल जिनी से बोली, आपको ऐसा नहीं लगा आपने मैम से थोड़ी ज़्यादा ही रूडली बात कर ली? क्या सच में? मगर मैंने तो नॉर्मल अंदाज दिखाया था, जिनी कंधे उचकाते हुए बोली। नहीं, ये थोड़ा अजीब था, प्रियल ने कहा। तब तो मुझे उसे जाकर बात करनी होगी, मेरा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, जिनी ने कहा और जाने की तैयारी करने लगी। जाते जाते वो बोली, अच्छा तुम लोग डॉक्टर को दिखा देना, यहाँ तुम्हें इंडियन डॉक्टर भी मिल जाएंगे, यहाँ लगभग हर तरह के डॉक्टर हैं, तो तुम जैसा सही लगे वैसा कर लेना। आरोही, तुम हो ना इसके साथ? हाँ मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ प्रियल के साथ। इसे छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊँगी, मुझे तो इसे इंस्टीट्यूट के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता। ओह वेल, तब तो तुम इसका ध्यान रखना, जैसे ही इसका ट्रीटमेंट होता है हम कैंपस के लिए निकल जाएंगे, जिनी ने कहा और फिर वहाँ से चली गई। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। प्रियल और आरोही की डॉक्टर से बात हो गई थी और उनका इलाज भी हो गया था। इलाज के लिए उन दोनों को अलग जगह पर ले जाया गया था, जहाँ से वो दोनों वापस आ रही थी। वे दोनों वापस आईं तो उन्हें एक लड़की मिली, जिसने दोनों को देखते ही कहा, अरे तुम तो वही हो ना जिसे सुबह चोट लगी थी, ठीक हो ना तुम? प्रियल ने इसे देखा पर पहचाना नहीं। उसने जवाब दिया, हाँ थोड़ी मसल्स इंजर्ड हो गई है, क्रैप बैंडेज रखूंगी तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आप हमारे कैंपस की तो नहीं लगती, तो हम कैसे? आरोही ने भी उसे देखते हुए कहा, मैंने भी आपको पहले नहीं देखा, आप कौन हो? लड़की ने दोनों को जवाब दिया, मेरा नाम आयशा सिद्दीकी है और मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, तुम दोनों की सीनियर, या यूं कह लो होने वाली सीनियर। तुम लोग अभी प्री ट्रेनिंग प्रोसेस में हो तो पता नहीं आओगे या नहीं। मैं तुम दोनों को इसीलिए जानती हूँ क्योंकि सुबह मैं भी कैंपस आई थी, लेकिन मेरा काम स्टोरेज मैनेजमेंट का है, तो मैं कैंपस में उसकी अरेंजमेंट देख रही थी। आरोही को उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस वाली बात थोड़ी अजीब लगी, उसे उसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। वो बोल पड़ी, तुम क्या यहाँ पर हमारी रैंकिंग करने आई हो? हम लगेंगे या नहीं ये भविष्य बताएगा, लेकिन इसे लेकर कुछ भी कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, आयशा ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, अरे मैं भी आपकी तरह इंडियन ही हूँ, तो मैं क्यों तुम्हारी रैंकिंग करूंगी? प्रियल को भी उसकी बात का बुरा लगा था। वो उसके कहते ही बोल पड़ी, मतलब अगर हम इंडियन नहीं होते तो तुम हमारी रैंकिंग करती? नहीं, यहाँ रैंकिंग अलाउड नहीं है, वैसे यहाँ पर बहुत कम इंडियंस हैं, और जो हैं वो बहुत बोरिंग टाइप के हैं। मुझे यहाँ पढ़ते हुए 1 साल हो गया, लेकिन सच कहूँ तो इस 1 साल में कोई भी ढंग का फ्रेंड नहीं मिला। मैं वैसे लखनऊ से हूँ, तुम दोनों अपने ग्रुप में मुझे भी ले लो ना, कम से कम कोई मेरे साथ बात करने वाला तो होगा, आई मीन इन फ्यूचर। प्रियल ने ईगो वाला चेहरा बनाया और कहा, नहीं मिस सीनियर, जब हम हमारे फ्यूचर का आता पता ही नहीं जानते तो हम आपसे दोस्ती क्यों करें? एक बार हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाए उसके बाद हम खुद ही देख लेंगे हम आपसे दोस्ती करनी है या नहीं। प्रियल ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। एमा जीनी से गुस्सा होकर रॉन के पास आई और उसकी कंप्लेन करने का सोचा, मगर तभी जीनी वहां आ गई। इससे पहले एमा उसकी कंप्लेन करती, जीनी बोली, हे सॉरी एमा, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। आज दिन भर जो भी हुआ उसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा रूड सा हो गया था, वही चीज मेरे बिहेवियर में आ गई और मैंने तुम्हें पता नहीं कैसे ये कह दिया। एमा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। जिनी ये देखकर उसके पास आई और उसे पीछे से हक कर लिया। हक करते हुए वो बोली, मेरी प्यारी सी दोस्त मुझसे नाराज नहीं हो सकती, ए माफ कर देना, गलती हो गई छोटे से, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मेरी सूटो मेरी प्यारो, मान जाना मेरी जान। एमा कुछ देर तक तो रूडनेस दिखाती रही, मगर जिनी के काफी देर तक ऐसा करने के बाद वो इसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकी और मान गई। वो जिनी की ओर पलटी और कहा, आज ऐसा हो गया मगर आज के बाद ऐसा मत करना, तुम्हें पता है ना तुम्हारा रूड बिहेवियर काफी बेकार होता है, अगर आगे ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारा सर ही फोड़ूंगी, जहाँ तुम्हारा छोटा सा दिमाग है और उस छोटे से दिमाग का मूड बिगड़ता रहता है। इतने में निक वहाँ कमरे के बाहर से गुजरा। वो बाहर से गुजरा तो उसने एक नज़र रॉन के कमरे में देखा, जहाँ उसे जिनी और एमा दिखाई दी। जिनी को देखते ही उसे प्रियल की याद आ गई और वो खुद को जिनी के पास जाने से नहीं रोक सका।
वो कमरे में गया और जिनी से पूछा, जिनी वो लड़की कौन थी? जिनी एमा के गले लगी हुई थी। उसने निक की बात तो सुनी मगर उसके मतलब को गहराई से नहीं समझा। वो गले से अलग हुई और बिना निक की तरफ देखे उससे पूछा, किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं। रॉन निक को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा क्योंकि उसने निक के मुंह से पहली बार किसी लड़की की कोई बात सुनी थी, वरना वो कभी एवलिन की बात भी इंस्टीट्यूट में नहीं करता। रॉन ने पूछा, क्या हुआ निक, तुम किसके बारे में जानना चाहते हो और क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? वो इसे नेगेटिव एंगल में नहीं ले रहा था क्योंकि वो निक को जानता था, इसलिए उसने कुछ गलत होने के अटेंशन में इस बात को पकड़ा। एमा समझ गई थी निक किस लड़की की बात कर रहा है। वो निक की तरफ देखते हुए बोली, निक तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो हमारी प्यारी जिनी की न्यू फ्रेंड और रूममेट है। निक हैरान हुआ, व्हाट, रूममेट? उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। यस, हो नहीं सकती क्या? जिनी बोली, मुझे वो लड़की अच्छी लगी और उसे कैंपस में कोई रूम नहीं मिला तो मैंने उसे अपने रूम में शिफ्ट कर लिया। अब तो हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। जिनी ने सब बताया मगर प्रियल के उसे पसंद करने वाली बात छुपा ली। निक को ये बात पसंद नहीं आई। वो टॉन्ट मारने वाले अंदाज में बोला,
अभी रोड पर मुझे 5 लोग मिले थे, वो रूम के लिए रूम ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा, मैं उन्हें भी भेज दूं तुम्हारे पास? निक, जिनी को रूड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था इसलिए वो रूड होने वाले मूड में बोली, तुम अच्छे से जानते हो इस बार कमरों की तंगी थी इसलिए मुझे उसे अपने साथ एडजस्ट करना पड़ा। हाँ, कमरों की तंगी थी लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के नहीं आने की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था। इसके बाद तुम उसका अरेंजमेंट कहीं और भी कर सकती थी। कर सकती थी लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान नहीं गया, कैंपस में कई सारे काम होते हैं, हम अपना सारा टाइम स्टूडेंट्स के रूम अरेंजमेंट में तो नहीं लगा सकते ना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो ये जॉब छोड़ दो। निक के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गईं। हमारे रूल में ही किसी स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट के मेंबर के साथ रहने की इजाजत नहीं है, वो कोई जासूस भी हो सकती है जिससे इंस्टीट्यूट पर कोई भी खतरा आ सकता है, इसी के चलते ये रूल बनाया गया। प्री ट्रेनिंग भी इसीलिए होती है ताकि इंस्टीट्यूट में भर्ती होने वाले मेंबर्स को अच्छी तरह से परखा जा सके। और तुम हो कि? निक आगे भी कुछ कहना चाहता था मगर जिनी ने उसकी बात को काटा और काटते हुए बीच में कहा, हाँ ये रूल है मगर इसमें कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कि रहने वाला वर्ड किस संदर्भ में यूज हुआ है, रिलेशनशिप के मामले में या फिर किसी और मामले में। और रही बात जॉब छोड़ने की, तो कैंपस पर पूरा कंट्रोल मेरा है, मेरे कंट्रोल के बाद सिर्फ अथॉरिटी ही उस पर कोई डिसीजन ले सकती है, इसके अलावा और किसी को भी उसके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, तुम्हारा भी नहीं। सो मुझे बाहर जॉब करनी चाहिए या नहीं तो मुझे इसके बारे में ना ही बताओ तो बेहतर। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए थे, उन दोनों की बात बढ़ सकती थी। ये देखते हुए एमा आगे आई और बोली, तुम दोनों उस लड़की की वजह से आपस में लड़ना बंद करोगे? तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो तो उस तरह से क्यों नहीं एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते, गुस्से को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? ये कहकर वो सिर्फ निक की तरफ हुई और बोली, और निक तुम कब से यहाँ के स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट लेने लगे? इसके बाद अचानक उसके मुंह से इसी अंदाज में निकला, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद आ गई? होल्ड योर वर्ड्स। ये सुनते ही निक का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। ये बात आज कह दी मगर आज के बाद ये बात कभी अपने मुंह से मत निकालना, एली की जगह कोई नहीं ले सकता, निक ने कहा और फिर उसी गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब वहां एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। एमा निक के रूम में पहुंची तो वो अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर गोल गोल घूम रहा था। एमा बोली, आई एम सॉरी निक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे ये बात निकल गई। मैं जानता हूँ इसलिए तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, निक ने कहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो किसी और ही बात के बारे में सोच रहा है। तुम इस बात को छोड़ो और मेरी इस बात पर ध्यान दो, मुझे वो लड़की सही नहीं लग रही, पता नहीं क्यों, जब से मैंने उसे पहली नजर देखा है तब से अजीब फील हो रहा है। मैं समझी नहीं? समझ जाओगी लेकिन इसमें वक्त लगेगा। मैं चाहता हूँ तुम उस लड़की पर नजर रखो, कोई जरूरी जानकारी मिले तो मुझे उसके बारे में बताओ। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती हूँ मगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगी, एमा ने कहा और इसके बाद चली गई। उसके जाने के बाद निक फिर से किसी बात में खो गया। अगली सुबह प्रियल वॉशरूम से निकलकर बाहर आई थी तभी उसके फोन की कॉल की घंटी बजी जिस पर प्रांजल का कॉल आया था। प्रियल ने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही प्रांजल सामने से बोली, हेलो प्रियल दी, मामा कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं, बात करो जल्दी, मैं कॉल कनेक्ट कर रही हूँ। इतना कहकर प्रांजल ने जल्दी जल्दी फोन कनेक्ट कर दिया। प्रियल ने खुद को संभाला और फोन के कनेक्ट होते ही बोली, हेलो मम्मा कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ मम्मा। प्रियल की नजर अपने हाथ पर गई और उसने अपनी चोट को देखा। प्रियंका जी ने सामने से कहा, तुम्हें पता है मुझे आज तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था, आई एम प्राउड ऑन यू बेटा, वो तुम्हारी डिजाइनिंग स्किल से बहुत खुश हैं। प्रियल प्रियंका जी की बात सुनकर थोड़ी दुखी हो गई क्योंकि वो असली सच्चाई नहीं जानती थी। उसकी आंखों से आंसू भी आ गए जिसे उसने पोछा। वो बात कर पाने की हालत में नहीं थी तो उसने प्रियंका जी को कहा, मम्मा मैं अभी बाहर हूँ, बाद में बात करती हूँ, लव यू, और कहकर फोन रख दिया। प्रियल ने कॉल कट करने के बाद उसी वक्त प्रांजल को वीडियो कॉल किया। अर्जुन भी वही मौजूद था। प्रांजल प्रियल को देखते ही बोला, क्या हुआ दी, आपको ये चोट कैसे लगी? अर्जुन ने एक्टिंग वाले अंदाज में कहा, चोट तो दिल पर लगी है, हाय आज तो हीरोइन अपने हीरो से मिली थी, तुमने सुना नहीं था कल?
हीरो से मिलने की एक्साइटमेंट में इसने ठीक से बात भी ना की हमसे। प्रियल ने थोड़ा सा शर्माने वाला अंदाज दिखाया, मगर वो इस वक्त दुखी ज्यादा थी, तो शर्माने वाले अंदाज में ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वो जल्दी नॉर्मल हुई और कहा, आज मम्मा ने कॉलेज की बात की, मुझे उनसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा, हम उन्हें कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। अर्जुन कैमरे के आगे आया और बोला, पागल, अगर हम ये सब नहीं करते तो आज तुम यहाँ नहीं होती। हमने जो भी किया था वो सोच समझ कर किया था। ये जितनी भी चीजें हैं इनको तुम्हें कुछ टाइम के लिए एडजस्ट करना होगा। इसके बाद हम खुद सबको सच्चाई बता देंगे या फिर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्रियल बच्चों की तरह रोने वाला मुंह बनाकर बोली। तो तुम इस बात पर ध्यान मत दो ना, अगर तुम इस बारे में ज्यादा सोचोगी तो परेशानी होगी। अर्जुन की बात के बाद प्रांजल ने भी प्रियल से कहा, हाँ दी, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। प्रियल को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, उसने दोनों के चेहरों की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सो मच अर्जुन एंड परी, मैं तुम लोगों का बस यहीं रुक जाओ, फिल्मी डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं है, और ये वाला डायलॉग तो मत ही मारा करो, हर जगह बस तुम यही कहती रहती हो। अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया था। उसे रोकने के बाद वो बोला, और सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना पड़ेगा आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसी रही पहली मुलाकात। प्रियल ने सुनते ही वो पूरी तरह से शर्मा गए। वो अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तो उसकी नीली आंखों में बस खोस ही गई थी। अर्जुन उसे अजीब सी आंखों से देखने लगा। उसने टेढ़ा मुंह करते हुए पूछा, क्या सच में उसकी आंख नीली है। प्रांजल अर्जुन की तरफ हुई और बोली, तू लड़का है या लड़की, क्या लड़कियों जैसी बात कर रहा है, ऐसी बात लड़कियां करती हैं। फिर प्रांजल प्रियल की तरफ देखते हुए बोली, वाओ दी, क्या सच में उसकी आंख नीली है। प्रियल ने अपने हाथ अपने चेहरे से हटाए, हाँ यार, बहुत खूबसूरत आंखें हैं उसकी, और उसकी डिम्पल्स, मैं तो मर ही जाऊंगी। पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ और वो वहां से गुस्से में चला गया, देखो उसकी वजह से मुझे चोट भी लग गई। प्रियल ने अपनी चोट दिखाई, ये कैसे लगी। अर्जुन चोट की तरफ देखने लगा, क्या उसने तुम्हें मारा। अरे पागल नहीं, वो बस हल्का सा धक्का लग गया था, वो मुझे देखकर ऐसे चौंक गया था जैसे पता नहीं क्या देखा हो। ओह, तब तो कोई बात नहीं, प्रांजल बोली, फिर तो ये तो पहली मुलाकात की निशानी है, संभाल कर रखो अब इसे, प्रांजल ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। तभी उसके दरवाजे पर एक लड़की आई और डिनर टाइम का बोली। प्रियल ने ये सुना और फिर दोनों को कहा,
चलो अब मैं चलती हूँ, डिनर टाइम हो गया है, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद एक पल के लिए वो उन दृश्यों में खो गई जहाँ निक उसकी तरफ पलटा था। उसकी नीली आंखें, उसके हवा में उड़ते बाल, ये सब उसे अब अच्छे से याद आ रहे थे। तभी निक ने उसे धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। ये याद आते ही वो चौंक उठी और दृश्यों से बाहर आ गई। वो खुद से ही बोली, पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ था जो मुझे देखकर उसने ऐसा रिएक्ट किया। प्रियल इसके बाद खड़ी हुई और डिनर के लिए चली गई। निक अपने इंस्टीट्यूट में अपने ऑफिस के अंदर बैठा था। उसका हाथ अपने चेहरे पर था और वो अपने सामने मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रियल की 360 डिग्री व्यू वाली पिक थी, जो किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाते वक्त ली जाती थी। निक उसे घुमा घुमा कर देख रहा था। उसने प्रियल की पीठ को फ्रंट की तरफ किया तो उसे एली की याद फिर से आ गई। एक खूबसूरत पार्क में एली सामने की ओर दौड़ रही थी, अपनी मस्ती में, अपनी धुन में। उसकी पीठ वाला हिस्सा निक की ओर था, जो उसके पीछे अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल धीरे धीरे चल रहा था। एली की पीठ और प्रियल की पीठ दोनों एक जैसी थीं। निक जल्दी यादों से बाहर आया और प्रोफाइल डिटेल पर गया। वहां लिखा था, नेम प्रियल शर्मा, एज 19, फादर नेम निशांत शर्मा, मदर नेम पूजा शर्मा। फिर इसके बाद बेसिक डिटेल थी, जिसमें लिखा था वो मुंबई में बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, सेशन बीच में छोड़कर यहाँ आई है क्योंकि उसे एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक था। निक ने पूरे डेटा का प्रिंट निकाला और उसे अपने साथ ले गया। लगभग दो घंटे बाद वो अपने कमरे में था। प्रियल का प्रिंट डेटा उसके बगल में था। वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने प्रियल की पिक उठाई और उसे देखने लगा। वो ना चाहते हुए भी प्रियल की तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा था। वो कुछ देर तक उसकी पिक को देखता रहा। इसके बाद उसे गुस्सा आया और उसने उसी पिक को अपने हाथ में मोड़कर दूर फेंक दिया। उसे दूर फेंकने के बाद उसने बेड का ड्रॉअर खोला और कई सारी नींद की गोलियां खा ली। नींद की गोलियां खाने के बाद वो बेड पर लेटा और आंख बंद कर बोला, एली, मैं सच में तुम्हारी जगह किसी और को नहीं लेने दूंगा।